نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. دیکھتے ہیں سورت کو، کافی ساری اس کے اندر ڈیٹیل بھی ہے. سورت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکی دور کے شروع کی یہ سورت ہے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھریٹ بن چکے تھے کفار مکہ کے لیے. پہلے شروع میں تو انہوں نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی نا کہ یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں کوئی نہیں، خود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا زور ٹوٹ جائے گا. لیکن جب آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو تب وہ خوف زدہ ہونے لگے، اور اسلام جیسے جیسے قوت پکڑتا چلا گیا. کہ جیسے یہ جب سورت نازل ہوئی، اس سے پہلے حضرت حمزہ جو تھے وہ قریش کے بڑے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے. پھر ان کے بعد ہی فوراً کچھ عرصے میں ہی حضرت عمر، وہ بھی ان کے بہت، یعنی سمجھ لیں یہ دو بڑے ہیروز تھے ان کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ پھر کچھ سیریس لینے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کی تعداد تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب ان کا کیا کیا جائے، جنہوں نے ہمارے اندر پھوٹ ڈلوائی ہے، ہمارے دین میں عیب نکال رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں. تو اس میں ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کا سسر. تو اس نے کہا سب کو کہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آیا، آ کے کہنے لگا، اے محمد، یہ تو بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا عبداللہ، یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر سوال کیا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا تمہارے دادا عبد المطلب. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کہنے لگا، سنو، اگر تم اپنے آپ کو اپنے یا اپنے باپ دادا کو اچھا سمجھتے ہو، تب تو تمہیں پتا ہے کہ وہ بھی تو ہمارے ہی معبودوں کو پوچھتے رہے تھے جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کے تم عیب بیان کرتے ہو. اور اگر تو تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہو تو ہم سے بات کرو، ہم بھی تمہاری باتیں سنیں. قسم اللہ کی، دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ تکلیف دے پیدا نہیں ہوا. تم نے تو ہمیں توڑ پھوڑ دیا، ہمارے اتفاق کو نفاق میں بدل دیا، تم نے ہمارے دین کو عیب دار بنایا، اس میں برائی کی، تم نے سارے عرب میں ہمیں بدنام کر دیا، رسوا کر دیا. آج ہر جگہ تذکرہ ہے کہ قریشیوں میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا، ایک کاہن پیدا ہو گیا. اب تو یہی ایک بات رہ گئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیں، ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لگا کے آ جائیں اور لڑ بھیڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں. سنو، اگر تمہیں مال کی خواہش ہے تو وہ لے لو، ہم سب مل کے تمہیں اتنا مال دیں گے کہ عرب میں تمہارے برابر کوئی اور امیر نہیں ہوگا. اور اگر تمہیں عورتوں کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی تمہیں پسند ہو تو بتا دو، ہم ایک چھوڑ دس دس شادیاں تمہاری کرا دیں گے. یہ سب کہہ کے آپ جب چپ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، میری سنو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اسی سورت کی تلاوت شروع کی، اور تقریباً ڈیڑھ رکوع ابھی پڑھا تھا. مثلا سائقۃن عاد و ثمود، یہ یہاں تک پڑھا تھا. اتنا سن کے عتبہ بول پڑا، بس کریں بس کریں، آپ کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں. اب یہ یہاں سے اٹھ کے چل دیا. قریش کا مجمع اس کا منتظر تھا، انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو کیا بات رہی؟ عتبہ نے کہا، سنو، تم سب مل کے جو کچھ اس کو کہہ سکتے تھے میں نے اکیلے ہی سب کچھ کہہ دیا. انہوں نے کہا، پھر اس نے کیا جواب دیا؟ کہا، جواب تو دیا لیکن باللہ، یعنی اللہ کی قسم، مجھے تو ایک حرف بھی اس کا سمجھ نہیں آیا، البتہ اتنا سمجھاؤں کہ انہوں نے ہم سب کو آسمانی عذاب سے ڈرایا، جو عذاب قوم عاد پہ، قوم سمود پہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تجھے اللہ کی مار، ایک آدمی عربی زبان میں جو تیری زبان ہے تجھے کلام کر رہا، تو کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا ہاں، عتبہ نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں، سوائے عذاب کے ذکر کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو قسمیں دینے لگا، رشتہ داری یاد دلانے لگا کہ بس کریں، اور یہاں سے الٹے پاؤں واپس جا کر گھر میں بیٹھ گیا۔ قریشیوں کی بیٹھک میں بھی آنا جانا اس نے چھوڑ دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا، قریشیوں میرا تو خیال ہے کہ عتبہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا اور وہاں کے کھانے پینے میں للچا گیا، وہ ضرورت مند تھا۔ اچھا تم میرے ساتھ چلو، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے دوسرے کو، یعنی عتبہ کے دل میں تو یہ کلام، یعنی اتنا اثر اس کلام نے کیا تھا، تو اب وہ جان تو گیا تھا کہ کلام تو حق ہے، لیکن دیکھیں اب ابو جہل نے آ کے اس کو کیسے ڈی ٹریک کیا۔ وہاں جا کے ابو جہل نے کہا، عتبہ تم نے جو ہمارے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، اس کی وجہ ایک ہی صرف معلوم ہوتی ہے، تجھے اس کا دسترخوان پسند آ گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے کھانے پینے پسند آ گیا، تو بھی لالچ میں آ گیا، تو بھی اسی کی طرف جھک گیا۔ ضرورت مندی بری چیز ہے، میرا خیال ہے ہم آپس میں چندہ کر کے تیری حالت ٹھیک کر دیں تاکہ اس مصیبت اور ذلت سے تو چھوٹ جائے۔ اس کے لیے تمہیں ڈرنے کی یا نئے مذہب کی کیا ضرورت ہے، ہم ہی چندہ اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس پہ وہ بگڑ گیا۔ اب ظاہر ہے کسی کی انا کے پر جب بات آئی تو وہ تو بگڑ گیا، کہنے لگا مجھے ان سے کیا غرض ہے، اللہ کی قسم اب اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گا، اور تم میرے بارے میں ایسے خیالات ظاہر کرتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ قریش میں مجھ سے زیادہ بڑا مالدار ہی کوئی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ تم سب کے کہنے سے میں اس کے پاس گیا تو تھا، سارا قصہ کیا سنایا تھا، باتیں کہیں میرے جواب میں، پھر جو اس نے کلام پڑھا، واللہ نہ وہ شعر تھا، نہ کہانت تھی، نہ جادو تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے تو جب وہ اس سورت کی اس نے آیات بتائی کہ جب وہ یہاں تک پہنچے تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتے ناتے یاد دلائے کہ واللہ ہی رک جاؤ، مجھے تو خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں اسی وقت ہم پر وہ عذاب نہ آ جائے، اور یہ تو تمہیں سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں۔ نہیں، اس بات کو وہ مانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ باتیں جو بتا رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن دیکھیں کبھی انسان حق کو پا کے بھی کیسے قریب جا کے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اتنی قریب جا کے پھر تم کیسے پھر جاتے ہو، نہیں پتہ چل گیا ہے بات صحیح ہے لیکن پھر بھی نہ مانے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، خدا کی قسم نہ تو وہ جادو کا کلام ہے، نہ شعر ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے، اے میری قوم قریش تم میری بات مانو، اس معاملے کو میرے حوالے کر دو، میری رائے ہے کہ تم اس کے مقابلے میں اور اس کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ، اس کا مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ، ان کو ان کے کام کرنے پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان کے اس کلام کی ضرور ایک خاص شان ہونے والی ہے، تم ابھی انتظار کرو، باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو، اگر قریش کے علاوہ باقی عرب لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو تمہارا مطلب پورا ہو گیا، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کوششیں کرنے کی، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی، اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہوگے۔ اس وقت قریشیوں نے کہا، اے ابو الولید تم پہ تو محمد کا جادو چل گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بات کو سمجھ بھی چکا ہے، مان گیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ اللہ اکبر، ایمان بھی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی یعنی نصیب والوں کو ملتا۔ حامیم، حروف مقطعات، تنزیل نازل کرتا ہے، کیا نازل کرتا ہے؟ یہ کلام، یہ قرآن۔ اسی لیے بعض مفسرین نے حامیم کا ترجمہ یہ قرآن ہی کیا کہ حامیم سے مراد قرآن ہے۔ یہ قرآن نازل کردہ ہے کس کی طرف سے؟ من الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان رحم کرنے والے کی طرف سے۔ رحیم میں کیا آتا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان میں کیا آتا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو आप ये देखें कि यहाँ पे कुराने पाक जिसकी तरफ से नाजिल हुआ है, उस रब ने अपनी जो दो सिफात यहाँ पे बयान की हैं, ये नहीं फरमाया कि तंजीनु मिनल कहार अल जब्बार। हमेशा यही आया मिन अर रहमान अर रहीम। सूरह रहमान में भी यही है ना, अर रहमान अल्लम अल कुरान, ये रहमान ही है जिसने तुम्हें कुरान सिखाया। यानी क्या पता चलता है इससे कि ये अल्लाह ताला की सरासर रहमत है कि उसने ऐसा कलाम इंसान के लिए नाजिल किया। हो सकता है किसी को ये कुरान बोझ लगता हो सकता है कोई मुश्किल लगता हो, लेकिन ये अल्लाह ताला ने किसी को मुश्किल में डालने के लिए नहीं नाजिल किया। ये अल्लाह ताला ने बतौर रहमत नाजिल किया है, ये उसका रहम है कि उसने ये कलाम दिया। और वाकई इसका अंदाजा खास खास तौर पे आप उस वक्त लगा सकते हैं जबकि कोई गम हो, कोई परेशानी हो, कोई बेकरारी बेचैनी हो, आप इस कलाम को खोलें और इसको पढ़ें। आप देखें ऐसे लगेगा जैसे दुखी दिल पे किसी ने मरहम रख दी, जैसे किसी ने सुकून दे दिया। ऐसी सकीनत उतरती है इस कुरान से। फिर आपको ये कोई भी मसला हो, ये उसमें भी रहनुमाई करता है। जब रास्ता समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, जब इंसान लॉस्ट होता है ये रहनुमाई करता है। कई जहन में ऐसे कश्मकश जारी होती है, ये ठीक है या ये ठीक है। कई सवाल ऐसे होते हैं, कई उलझने ऐसी होती हैं। जब आप ये कलाम पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, ऐसे लगता है आपकी उलझन का जवाब आ गया। तो ये तो सरासर रहमत है, ये ना होता तो इंसान गुमराही के अंधेरों में भटक रहे होते, रास्ता ही ना पता चलता। सीधा रास्ता क्या है, जिसने बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमसे क्या डिमांड करता, कुछ ना पता होता। तो ये कलाम तो रहमत है, रहमतें लेने के लिए हम सब कितने यानी शौक रखते हैं ना, कहीं पता चल जाए कि अल्लाह की रहमत इस चीज के अंदर है। सबको कितना शौक होगा ना अल्लाह की रहमतें समेटने का। इसके लिए हम कई दफा यानी कुरान खानियां भी कराते हैं, ये कहते हैं हमारे घरों में बरकतें हों, रहमतें हों। तो ये कुरान सरासर रहमत है, मगर बात ये है कि रहमत उसके लिए जो इसको पढ़े, इसको समझे, इसके ऊपर अमल करे। एक दफा कुरान पढ़ा लेने से रहमत नहीं हो जाती, इसको जिंदगी में शामिल करें। तो इससे भागना नहीं है, ये तो रहमत है, रहमत को तो दौड़ दौड़ के लो। किताबुन, ये एक ऐसा कलाम है, एक ऐसी किताब है। किताब किसको कहते हैं, लिखी हुई चीज को। फुसिलत, जो खोल के बयान करती है। इसमें खोल के बयान की गई है क्या, आयात हूँ, इसकी आयात। देखिए हर आयत आप देखें इसमें, अब हम तो जाहिर सी बात है अहले जुबान नहीं है, इसलिए हम इसकी जो असल मीनिंग है तब उस तक भी नहीं पहुंच सकते। मगर क्यों, देखें काफिर है उतबा, और उसके दिल पे इतना असर किया इस कलाम ने कि चुपका होके घर में बैठ गया। उसने मान लिया भाई खुदा की कसम ये जादू नहीं, खुदा की कसम ये शेर नहीं, ये कहानत नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज है। मान गया था, दिल से तो माना हुआ था। क्या बात थी कि वो इसको समझते थे, इस जुबान को भी समझते थे, इसकी फसाहत और बलागत को भी समझते थे, वो जानते थे कि ये क्या है। तो इसकी तो आयतें देखें ऐसे खोल खोल के अल्लाह ताला ने यानी इतनी क्लियरली बयान किया हुआ इसके अंदर। क्या बयान है, जिंदगी के तमाम मामलात को देखें ना आप, कि जो भी इस कलाम में आयतें चीजों को वाजे करती हैं, कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना, किस पे अजाब है किस पे सजा है और किस पे इनाम है, सारी तफसील है इसमें। किस चीज से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, किस से अल्लाह ताला खुश होते हैं, कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज इंसानों के लिए मुजिर है। आप देखिए हर चीज को इसने वाजे किया है ना, वजाहत है, सवाब के काम भी अजाब के काम भी। तो ये कलाम तो ऐसा है। और फिर देखें इसके अंदर सुबहान अल्लाह आयात ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है, अगर आपको सिर्फ कमांड्स दी जानी होती ना तो एक मुख्तसर से एक पारे के अंदर आपको सारी कमांड दे दी जाती, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, उमरा करो, लोगों से अच्छा सलूक करो, ये करो, ये करो, ये करो, जैसे हम रूल्स लेआउट कर देते हैं, लिख देते हैं कहीं, भाई ये अल्लाह ताला ने कवानीन दे दी है, बस ऐसे करना। लेकिन आप देखें पूरा कुरान, आपको अहकामात तो कम है, अब हमने पिछली सूरत भी पढ़ी है, कितने हुक्म आए उसके अंदर, कोई ज्यादा नहीं। ज्यादा क्या चीज है, आपको मोटिवेट किया गया है, आपको वो एनर्जी देता है कि आप अमल कर सके। सिर्फ हुक्म सुना नहीं दिए गए, आपको वो ताकत, वो जज्बा जो उस हुक्म पे अमल करने के लिए चाहिए, उसके लिए भी तैयार किया गया है। तो फुस्सिलत आयातुहू, इसकी आयतें साफ साफ हैं, बिल्कुल वाजे हैं, कोई ये नहीं कह सकता जी मुझे नहीं समझ आती। कुरआनन अरबियन, कुरआन है अरबी जुबान में। अरबी क्यों है ये? इसलिए कि इसके अव्वलीन जो मुखातिब थे, जो फर्स्ट जिनसे बात की जा रही है, वो तो अरब ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता जिनसे बात की जा रही है वो अरब हो और कलाम अंग्रेजी में हो, ये तो नहीं हो सकता। तो कुरान को भी अरबी जुबान में नाजिल किया गया, और अरबी जुबान में जितनी जो जितनी रिच ये लैंग्वेज है, और शायद कोई भी लैंग्वेज इतनी वो नहीं है। जब आप और इसकी डेप्थ में जाते हैं तो आपको पता चलता है, हम तो अपने उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त पूरे पूरे सेंटेंस कई दफ़ा लिखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस एक लफ्ज़ का माना नहीं बयान हो पाता। एक एक लफ्ज़ के कई कई माने हैं। ले कौम यालमून, लिए उस कौम की जो इल्म रखती है, वो जो इल्म रखने वाले हैं ना वो ही जान सकते हैं कि ये कलाम है क्या, उन्हीं को पता चलेगा। क्योंकि हमारा इल्म, अब ये यहां पे कहा ना लिखाओ में यालमून, अब वो अहले मक्का के पास कौन सा इल्म था? उनके पास तो कोई ऐसा इल्म ऐसा सच नहीं था, जुबान का इल्म था ना। इसीलिए कहा गया उस कौम के लिए जो इल्म रखती हो, यानी अरब लोगों के जो जो जुबान को समझने वाले लोग थे, जो इसकी डेप्थ में जा सकते थे, वो ही जान सकते हैं कि ये कलाम है क्या चीज। इट्स अ होल वर्ल्ड, ये तो जैसे है जैसे समंदर है, उसके अंदर जितनी गहराई में डूबते चले जाओगे उतने ही मोती चुनोगे। क्या तो ये आप इसका मजा, इसकी लज्जत वही समझ सकते हैं जो इस जुबान को समझते हैं। इसीलिए इसको इसके टेक्स्ट में समझना जरूरी है। या तर्जुमे पढ़ लेते हैं, तर्जुमे में वो बात नहीं आ सकती जो असल टेक्स्ट में है, क्योंकि अल्लाह के कलाम की तासीर है ना, इसकी अपनी स्ट्रेंथ है। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप सिर्फ लिसनर ना बने, सिर्फ सुनने वाले ना बने, इसको सीखें, सीखने वाले बने, सीखिए इस कलाम को, इसके एक एक लफ्ज को समझिए, उसकी गहराई में जाइए, इसको अरबी में ही जानने की कोशिश करें, तर्जुमों की मोहताजी छोड़ दें। क्योंकि हर लफ्ज अपने लिए अंदर डेप्थ रखता है ना। अब मैं तर्जुमा कर दूं उसका, अब तर्जुमा सिर्फ एक लफ्ज का होगा उर्दू में, अब वो एक लफ्ज उस अरबी के लफ्ज को बयान नहीं कर सकता। मुझे 3 4 5 डिक्शनरी से मीनिंग दिखने होंगे तब जाके, फिर भी उसकी मैं उस तरह डेप्थ में नहीं पहुंच सकती। तो उसी जुबान में उसको समझे। तो इसको जाहिर है अहले इल्म ही समझ सकते हैं, उन्हीं को पता है कि वाकई ऐसे लगता है कि मोती जड़े में एक एक आयत में एक लफ्ज भी कुरान में ऐसा नहीं है जो एडिशनल, ऐसे ही बस वो, जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में इम्तिहान देते थे तो शीटों पे शीटें भर रहे हैं, जिसने ज्यादा शीट्स भर दी समझते थे यही ज्यादा लायक है। तो पता नहीं यहाँ पे भी आयतों पे आयतें भरी जा रही, ऐसी बात नहीं है। एक लफ्ज भी इसका, जो लोग इसको समझते हैं, इसकी डेप्थ को समझते हैं, वो मुफस्सिरीन बयान करते हैं, एक लफ्ज भी जायद नहीं है कि ऐसे ही बस रख दिया जाए, ऐसे ही बस ऐड कर दिया गया, ऐसे ही बस जरा खूबसूरती करने के लिए, जरा इसके लिए डेकोरेशन के लिए, नो, उसकी कोई अहमियत है। और एक लफ्ज भी आप हटा दें, माना नहीं वो बनता उसके बगैर। और फिर देखें, लिखाओ में या लमून का एक मतलब ये भी हो गया कि जिनको इल्म का शौक है ना, उनके लिए है ये, जिनके अंदर इल्म लेने की तड़प है उनको इससे फायदा मिलेगा। बशीरों व नदीरा, ये बशारत देने वाला भी है। अब हमने पहले पढ़ा था ना रसूल के बारे में, पढ़ा था कि वो बशीर और नज़ीर है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कुरान भी बशीर और नज़ीर है, ये खुद खुशखबरी देने वाला है, ये खुद डराने वाला है। आज नबी तो नहीं है लेकिन कुरान है, वो कलाम है जो उस नबी की जुबान से निकला, और इस कलाम में खुशखबरियां हैं किन के लिए, जो इसके ऊपर चलने वाले और डरावे हैं। फ़अअरदा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, इतनी बातें बता के, इस कुरान की ये सिफात बता के कि देखो कुरान तो ऐसा है लेकिन फिर भी अक्सर लोग हैं, इतने रहम करने वाले ने नाजिल किया, अरबी जुबान में भी है, वाजे भी है, फिर भी लोगों का हाल ये है, अक्सरियत का, मेजॉरिटी का, वो इसे बेरुखी इख्तियार करते हैं। क्यों बेरुखी इख्तियार करते हैं, क्यों एराज करते हैं? अक्सर हम फहम ला यस्मऊन, सुनना ही नहीं चाहते, यानी मानना तो दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहते, इधर को आते ही नहीं है। क्यों, किस चीज को नहीं हम सुनना चाहते, जिसमें हमें इंटरेस्ट ना हो? ऐसा ही है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें तो हम सोए भी हो तो कोई बात कर रहा हो तो हम फौरन आंखें खोल लेते हैं, कहते हैं क्या बात हो रही थी, कोई सैर की बात हो रही हो, कोई शॉपिंग की बात हो रही हो, कहीं लेटेस्ट फैशन की बात हो रही हो, फौरन कान खड़े हो जाते हैं। और जहां पे इंटरेस्ट ना हो तो वहां पे अल्लाह के कलाम की मजलिस में भी बैठ के लोग सो रहे होते हैं, फहमला यस्माउन, सुनते ही नहीं है। इतना खूबसूरत कलाम है अल्लाह का, उसकी रहमत है, लेकिन इन्होंने इस इल्म की कदर ही नहीं पहचानी। क्योंकि जब अल्लाह की कदर ना हो ना तो उसके कलाम की भी कोई कदर नहीं है। जो रब को पहचानता है, उसकी अजमत को जानता है, उसके लिए उसका कलाम भी अहमियत रखता है। वो कैसे हो सकता है कि उसके कलाम से मुंह मोड़े? और जिसको रब की अहमियत नहीं, उसके नजदीक ये कलाम भी है सिवाय एक आम किताब के और कुछ नहीं है। जैसे हीरे की पहचान जिसको ना हो तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? उसके लिए तो हीरा ऐसे ही है जैसे कोई पत्थर होता है, पत्थर ही लगेगा ना उसको। तो फिर आप ऐसे बंदे को देंगे हीरा जिसको पहचान नहीं होती, कीमती चीज देंगे? आप किसी बच्चे को दे देंगे, ये लो हीरा इसे खेलो? आप कहेंगे इसको पता ही नहीं है, इसको इसकी वैल्यू का ही नहीं पता? इसी तरह इस किताब की अहमियत वो ही जानता है जो उस रब को पहचानता है, जो इस कलाम को, इसकी फजीलतों को, इसकी बरकतों को, इसकी रहमतों को जानता है, वो ही इसकी अहमियत को जानता है, वो ही इसकी तरफ तवज्जो करता है, वो ही इसकी असल कदर कर सकता है। तो फिर याद रखें, हम नहीं ना देते जैसे कोई बच्चों को हीरा नहीं दे देंगे, फिर अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को अपना कलाम कभी नहीं देता जो इसकी कदर नहीं पहचानते। एक बात याद रखें, ये इल्म जो है ना, ये दीन का इल्म, कुरान का इल्म बड़ा गयूर है, समझते हैं गयूर को? बहुत गैरतमंद है। अल्लाह ताला उनको देता है जो इसकी कदर करने वाले होते हैं, और जो इसे पीछा छुड़ाएं, इसको कमतर समझें, इसको कोई वैल्यू ना दें, इससे जान छुड़ाएं, अल्लाह ताला उनको कभी नहीं देता। अल्लाह का कलाम किसी का मोहताज नहीं है कि वो आपके पीछे पीछे लेके फिरे कि लाओ ये पढ़ लें, अगर इन्होंने ना पढ़ा तो पता नहीं उसका कलाम कोई पढ़ने वाला ना होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत गैरतमंद है अल्लाह, उसका कलाम बहुत गयूर है। आप मुझे बताएं, आप कोई बहुत आपकी कीमती चीज हो, बहुत प्यारी चीज हो, बहुत काम की चीज हो, आप किसी बच्चे के हाथ में दे देती हैं कि जाओ इसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो? आप कहती हैं इसको पता ही नहीं है, इसको मैं कैसे दे दूं? आप ऐसे को देती हैं जिसको उसकी पहचान होती है, कदर होती है, वैल्यू पहचानता। अल्लाह ताला अपना कलाम ऐसे लोगों को नहीं देता जो उसे पीछा छुड़ाए। और ये हम नहीं जान सकते, ये अल्लाह कोई बेहतर मालूम है किसके दिल में कितनी कदर है इस किताब की, इस कलाम की। इसीलिए आप देखते हैं बाज लोग महरूम रह जाते हैं, वो महरूम होते हैं, वो मजलिसों में बैठ के भी महरूम रहते हैं, कुरान की मजलिस में बैठे महरूम है। अल्लाह में उनमें शामिल ना करे। आज आप देखें, किसी और को तो क्या कहना, उनके लिए तो कुफारे मक्का का तो था ही कि वो एराज करते थे, सुनते नहीं थे। आज हम इस कलाम के साथ क्या मामला करते हैं, कितने मुसलमान हैं जिसको शौक रखते हैं इसको सुनने का, जिनके कानों को ये कलाम बोझ नहीं लगता। ओके, आगे ये भी बात आ रही, खुद पढ़ना तो दूर की बात है, कोई सुनाए तो फिर भी नहीं सुनना चाहते। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, कितने लोग हैं जो कुरान में दिलचस्पी रखते हैं, इसका शौक रखते हैं, इसको सीखने का, समझने का, सुनने का। ऐसे लोगों को तो आप सुनने को भी कहें तो कहते नहीं, सुन भी नहीं सकते, सुनने को भी तैयार नहीं है, लिसनर बनने को भी कहें वो भी नहीं। फहुम ला यस्माउन, अल्लाह अकबर। रहमत उनके दरवाजे पर, घरों में मौजूद है, दस्तक दे रही है ये रहमत, और वो दरवाजा ना खोले तो अपनी बदनसीबी है ना फिर। तो अल्लाह ताला नहीं देता फिर ऐसे लोगों को। अगर आपके दिल में कदर नहीं है ना इसकी, याद रखें कि पूरा कुरान भी पढ़ लेंगे ये दिल में आएगा नहीं, इसकी कदर पहचाने, इससे मोहब्बत करें। जो इसको महबूब जानेगा, इसको अहमियत देगा, इसकी कदरदानी करेगा ना, आप देखें यही कलाम है, इसके जरिए अल्लाह ताला लोगों को ऊंचा कर देता है, हमने पढ़ा था ना, और यही कलाम है जिसके जरिए अल्लाह ताला लोगों को गिरा देता है। जब छोड़ते हैं तो अल्लाह इसी से, इसको छोड़ने पे ही उनको नीचा कर देता है। आज जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है ना, वो इसी वजह से और इसी कलाम से अल्लाह ताला लोगों को बुलंद कर देता है। और आपने देखा है जो उम्मत ये इतने अरूज पे गई थी, एक वक्त वो भी था ना, वो इसी कलाम के जरिए। तो वकालु कुलूबुना फी अकिन्ना, अब यहां से कुरैश के तीन कौल एक तरह से नकल किए जा रहे हैं कि जो उन्होंने तीन बातें कही इस कलाम के जवाब में, जब उनको सुनाया, सुनाने के लिए, उनको सुनने के लिए कहा जाता था, तो वो क्या कहते थे? नंबर वन क्या कहते थे? कुलूबुना फी अकिन्ना मिम्मा तदउना इलैह, भाई हमारे दिल तो पर्दे में है इससे जो तुम पुकारते हो हमको तरफ, उसके जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो ना, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है, यानी हमारे दिल पे बात असर ही नहीं करती, हमें समझ ही नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे माशाल्लाह से मुसलमान भी बात ऐसे कहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती इस कुरान की, तो हमें समझ ही नहीं आती, तो हमें तो पता ही नहीं चलता, डरना चाहिए इससे। वो कहते थे हमें नहीं ये समझ आती, हम क्या ईमान लाएंगे, हम क्या ये बात करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमारे दिल पर्दे में है। जब चीज पर्दे में हो जाती है तो क्या होता है, फिर उस तक आप पहुंच नहीं सकते ना, उसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, तो कवर्ड है, यानी अब तुम्हारी बातें बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर नहीं हमारे दिल के आ सकती, क्योंकि जो चीज दिल में आ जाए ना, दिल को लग जाए, वो फिर इंसान छोड़ नहीं सकता। सोचिए किसी की बात अगर आपके दिल को लग जाए, दिल में उतर जाए, फिर भूलती है वो भला, फिर छोड़ते हैं भला उसको। तो अल्लाह की बात भी जब दिल को लग जाती है ना, फिर इंसान इसको छोड़ नहीं सकता। तो कहते थे हमारे तो दिल ही पर्दे में, हमें तो समझ ही नहीं आती, यानी तुम हमें जो पैगाम दे रहे हो ना, ऐसे ही तुम तो अपना वक्त ही जाया कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आती, हमारे दिलों पे इसका कोई असर नहीं है। और नंबर टू, वफी आदानी ना वक्रम, और हमारे कानों में गरानी है, बोझ है, यानी हम सुन ही नहीं सकते जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, हमें हमें नहीं सुन रहा वो, हमारे कान बहरे हो गए इससे। वक्र है ना, बोझ है, बोझ कोई चीज कब बोझल हो जाती है, ये सुना नहीं जाता, कब होता है ऐसे, जब कोई चीज पसंद ना हो, इतना आप ये बात मुझे ना सुनाओ, मेरे से बार बार सुनी नहीं जाती, बोझ लगने लगती है। जब लोग यानी कुरान पढ़ा जा रहा हो और लोग चैनल चेंज कर देते हो, या कहते हैं उसको बंद करो, कुछ और सुन लें, ये नहीं सुनना, क्यों? बस दिलचस्पी ही नहीं है, इससे मोहब्बत ही नहीं है, इसीलिए झट से उठ के उसको ऑफ करते हैं। तो जब इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो, उससे मोहब्बत ना हो, फिर वो बात बोझ लगती है कानों को। तो कहते थे हमें तो बस बोझ लगता है। अब वो अपने मुंह से बोल देते थे, हम दिल ही दिल में कहते रहते हैं अरे क्या मुसीबत है, बंद भी करते हैं बस भी करें। हम मुंह से बोल नहीं सकते लेकिन कैफियत वही होती है। वह मिम्बैनी ना वो बैनी का हिजाब। और तीसरी बात उन्होंने क्या की, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो भाई एक पर्दा है, एक हिजाब है। क्या हिजाब था वो? एक कौन सा हिजाब था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उन लोगों के दरमियान आ गया था? नबी तो वही थे, नबुवत से पहले इन्हीं लोगों में बैठते थे, उठते थे, इन्हीं के साथ होते थे, यही लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे, ट्रस्ट वर्दी कहते थे। अब क्या ऐसा हिजाब आ गया? अब क्या ऐसी दूरी हो गई? कोई जाहिरी पर्दा तो कोई भी नहीं था ना, कौन सा हिजाब था? ये असल में एक अनसीन हिजाब जिसको कहते हैं ना डिस्टेंस आ गया, हमारे और आपके दरमियान अब डिस्टेंस आ गया। और ये देखें, ये वाकई होता है कि जब कुरान दिल में उतर जाए, जिसके दिल में उतर जाए और जिसके ना उतरे, खुद ब खुद दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। किस तरह? आप देखें दोनों के शौक बदल जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, दिलचस्पियां डिफरेंट हो जाती हैं, एक का दुनिया को देखने का रंग ढंग अलग है, दूसरे का अलग है, एक की सोच का एंगल अलग है, दूसरे का अलग है, एक की प्रायोरिटीज अलग हैं, दूसरे की अलग है, तो डिस्टेंस तो खुद ब खुद आ जाएगा ना। आज भी देखें, एक एक बंदा है वो कुरान पढ़ता है, दीन की तरफ आ जाता है, और एक है जो बेदीन है। क्या होता है? पहले दोनों एक साथ रहते थे, सब था, दोस्ती थी या जो भी कोई ताल्लुक था, बड़े अच्छे भले हंसते खेलते थे। अब क्या फर्क आया? जाहिरियत में तो कोई शक्लें तो नहीं बदल गई ना, क्या हो गया? क्यों अजनबी होने लगे? क्यों अब एक दूसरे के साथ मजा नहीं आता? एक पर्दा सा हायल हो गया, अनसीन, एक डिस्टेंस आ गया, क्योंकि जेहन वो नहीं रहा, क्योंकि गोल्स फर्क हो गए, प्रायोरिटीज फर्क हो गई, थिंकिंग फर्क हो गई, अमल फर्क हो गए, लाइफस्टाइल फर्क हो गया, तो डिस्टेंस तो खुद ब खुद आएगा ना। पहले और बातें करते थे, अब हर वक्त अल्लाह की बातें करने लगे, तो डिस्टेंस तो आ गया ना। तो उन लोगों ने कैसा कैसी बात कही कि हमारे और आपके दरमियान तो एक पर्दा आ गया, हमारे रास्ते अब जुदा हो गए, हमारी सोच जुदा हो गई, हमारे दिल भी गिलाफों के अंदर हैं, कान भी हमारे बोझ लगता है उनको आपकी बातें सुनना, और ये भी जो एक खिंचाव सा आ गया है हमारे और आपके दरमियान, तो एक अजनबियत सी आ गई है, एक दीवार आ गई है। और आप देखें ऐसा एक घर में रहते हुए लोगों में भी हो जाता है, एक सोसाइटी में एक ही खानदान एक ही फैमिली के लोग होते हैं, एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आ रही होती, वेवलेंथ ही नहीं मिलती। क्यों? दोनों के नफा नुकसान के पैमाने फर्क हो गए ना। क्या चीज हो जाती है कि इंसान का अंदर बदल जाता है, अंदर बदलता है, वरना इंसान तो वही होता, जाहिर है वही इंसान है, खाना पीना वही है। क्या जो दीन की तरफ आ जाता है क्या उसको खाना पीना छोड़ देता है, या उसके बच्चे नहीं होते, या उसकी शादी नहीं होती, या उसकी जरूरी जाते जिंदगी पूरी नहीं करता? क्या होता है? सब कुछ तो वही होता है, क्या चीज बदल जाती है? तो कुछ और नहीं बदलता, अंदर बदलता है, दिल बदल जाता है। ठीक है जाहिरियत में थोड़ा बहुत पहनने ओढ़ने में शायद कोई फर्क आ जाए, लेकिन अदरवाइज असल फर्क जो होता है ना वो अंदर है। फामल इन्नना आमिलून, पस अमल करो, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं, तुम भी करते जाओ जो तुम करते हो, हमने जो करना है ना तुम्हारी मुखालफत वो हमने नहीं छोड़नी, वो हमने करते ही जाना, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो, तुम अपना करते जाओ, हम भी करते ही जाएंगे तुम्हारी मुखालफत। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया है, इतना प्यारा जवाब, इतना अच्छा जवाब। ये नहीं कि उनकी बातों के ऊपर उनके साथ अब लड़ने शुरू हो जाए, तुमने ये कह दिया, तुमने गलत कह दिया, तुमने ऐसे कह दिया, कोई ऐसी बात करना नहीं, کتنا اچھا جواب اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے نبی، ان کی باتوں کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں، دلوں پہ پردے، کانوں میں بوجھ، اور اس کا جو یہ اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے بارے میں ایسا کہنے میں، ایک طرح سے مذاق بھی تھا نا اس میں، مگر اس کا جواب آپ نے کیسا دینا؟ کوئی تشدد کی بات نہیں کرے، کتنی عاجزی ہے اس بات میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کتنی عاجزی ہے! کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اتنا اونچا، آپ سے کہلوایا گیا، آپ کہہ دو میں تو خدا تو نہیں ہوں، میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، مثلکم، یہ لفظ دیکھیں کتنا پیارا ہے، صرف یہ نہیں انا بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہونے کے ناطے میرے اور تم میں کوئی فرق نہیں، فرق کہاں ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، کہ تم کیوں کہتے ہو میرے اور تمہارے درمیان حجاب آ گیا ہے، میں تو تمہارے جیسا ہی تو انسان ہوں، میں بھی کھا پی رہا ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں بھی بازار جاتا ہوں، کون سی چیز آخر میں نے چھوڑ دی ہے؟ تو میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، کوئی ہوائی مخلوق تو نہیں بن جاتا نا انسان دین کی طرف آ کے، اس کی بھی وہی ضروریات ہوتی ہیں، وہی غم ہوتے ہیں، وہی خوشیاں ہوتی ہیں، وہی جینا مرنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، خواہشات، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی. تو فرمایا میں بھی انسان ہی ہوں، تمہارے جیسا ہوں، کوئی الگ چیز نہیں ہوں، پھر کیوں کہہ رہے ہو یہ کہ اتنے حجاب آ گئے ہمارے اور تمہارے درمیان؟ صرف فرق یہ ہے کہ اب میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک رب کی طرف، ایک الہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، تو تم سیدھے ہو، فاستقیم، اس ایک الہ کو مانو اور سیدھے رہو. سیدھے رہو کا مطلب کیا؟ سیدھے چلو کا مطلب کیا؟ سیدھے چلو الیہ، اس کی طرف. ایک تو یہ استقامت سے ہے، استقامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جم جانا، دونوں معنی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. استقامت مانا جم جانا، یعنی تم ایک الہ کو مانو اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، استقامت پہ رہو. اور استقامت کیا ہے؟ کہ حق کی اتباع کرنا، نیک کام کرنا، سیدھے راستے پہ چلنا. اور یہ مشکل کام ہے کہ انسان نیکی پہ استقامت رکھے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ عمل کرے اور اس میں جمع رہے. یعنی علامہ طیبی نے کہا ہے کہ استقامت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استقامت، یعنی اللہ کی اطاعت کرے، اور دوسری بندوں کے ساتھ استقامت، یعنی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. تو استقامت پہ رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کا حق ادا کرنا یہ آسان نہیں ہے. انسان نیک کام کرتا جاتا ہے، پھر کہیں پھسل جاتا ہے، پھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، پوری کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں تو انسان یعنی اس سے کمی رہ ہی جاتی ہے، پورا نہیں پڑتا. تو فرمائے استقامت پہ رہو، چلتے رہو، واستغفروہ، کیونکہ کمی رہ جائے گی تو اللہ سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ استقامت پہ رہو اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے، یعنی کہیں نہ کہیں کمی رہ ہی جائے گی. ہر معاملے میں استقامت پہ ہر وقت رہنا مشکل ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہہ دیں فاستقیموا، سیدھے رہو، برقرار رہو، قائم رہو، کس کی طرف؟ الیہ، اس کی طرف. بالکل ادھر جب چیز سیدھی رہتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ کوئی چیز سیدھی ہو بالکل تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ٹلٹ نہ ہو، کہیں جھکاؤ نہ ہو، نہ تو اس طرف کہ کہیں شرک میں چلا جائے، اس طرف جھک جائے، ادھر چلا، نہیں، بالکل سیدھے. اسی سے آپ ذہن میں رکھیں استقامت، فاستقیموا کیا ہوگا. تو توحید انسان کو ایسا ہی کر دیتی ہے کہ انسان پھر بالکل سٹریٹ ہو جاتا ہے، واقعی हर एक से बेनियाज होके सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, फिर उसी पे भरोसा करता है, उसी से दुआएं करता है, उसी से उसकी अकीदतें जुड़ी होती हैं, जिसके मोहब्बत करता है उसके लिए करता है, जिससे नफरत करता है उसके लिए करता है, किसी को कुछ देता है तो उसके लिए, किसी से कुछ लेता है तो उसके लिए, किसी से मेल मिलाप रखता है तो उसके लिए, किसी को खिलाता है तो उसके लिए। ये है फस्तकीम, उसी दे रहो उसी की तरफ। हर काम छोटे से छोटा छोटा और बड़े से बड़ा सिर्फ उसी के लिए, यानी उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। सारे कामों का तुम्हारा सेंटर उसी की जात हो। कोई भी काम कर रहे हो, इबादत का कर रहे हो या लोगों से मामलात का कर रहे हो, सोच अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, नियत उसी की रजा होनी चाहिए, इखलास हो उसके अंदर, यानी इखलास के साथ। इस्तकामत में ये भी आ जाता है ना, इखलास के साथ काम करो, क्योंकि इखलास से नियत ना रही तो इंसान तो सीधा ना रहा ना। अगर उसमें किसी और की रजा आ गई कि किसी और को राजी करना है, किसी और को खुश करना है, किसी और को दिखाना है, तो सीधा तो ना रहा, टेढ़ा हो गया ना, फिर उसकी तरफ झुक गया। तो नहीं, सीधे रहना। ये भी हमारे लिए भी कितना बड़ा इसके अंदर सबक है कि इस्तकामत के साथ हमने चलना, किसी तरफ को भी नहीं झुकना। ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान बार बार अपनी नियत करता है, सीधी करता है नियत, फिर टेढ़ा हो जाता है, फिर उसके दिल में कोई लालच आ जाता है, फिर अपनी खुदनुमाई का, अपनी तारीफ का और इस का की चाहत दिल में आने लगती है, फिर वो कहीं तकब्बुर कर बैठता है, कहीं अपनी यानी तारीफ की लालच कर बैठता है, कहीं फूल जाता है, कहीं दिखावा कर देता है। तो नहीं, सीधे रहना है और बख्शिश मांगते रहो उससे। अब ये नहीं है कि अच्छा हम तो सीधे रह ही नहीं सकते और चलो छोड़ो ये सारे नेकी के काम तो छोड़ो, क्योंकि हमसे तो नियतें सही नहीं होती, इखलास आता ही नहीं है। नहीं, इस्तग़फार करते रहो, फिर अपने आप को सीधा करो, फिर चलो, रास्ता नहीं छोड़ना, नेकी के काम नहीं छोड़ने, नियतें दुरुस्त करते जाना। वैलुन लिल मुशरिकीन, और वैल है मुशरिकों के लिए, हलाकत है मुशरिकीन के लिए। किन की खास तौर पे बात हो रही है? अल्लदीन ला युतून ज़कात, खास तौर पे उनकी बात यहाँ पे हो रही है जो ज़कात नहीं अदा करते। अब ज़कात का माना यहाँ पे क्या है? ज़कात वैसे तो यानी ज़कात के जो सारे अहकामात थे वो तो जाके मदीना में दिए गए, मक्का में भी ज़कात का तो यानी नमाज ज़कात वगैरह का तो यानी इसके बारे में फ़र्ज तो नहीं हुई थी, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता था, नमाज के साथ ही ज़कात का भी हुक्म आ गया था। तो लेकिन यह है कि पूरी जो तफसीलात हैं और जो किस तरह वसूल होगी और किस तरह इसका इंतज़ाम होगा, तो वो सारी चीज़ें जाके उसकी डिटेल जाके मदीना में ये आयात आई और उसके बाद ये बाकायदा तौर पे फ़र्ज हो गई, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था ज़कात का। तो वो जो ज़कात नहीं देते, अब बात तो मुशरिकों की हो रही है, फिर ये क्यों कहा गया वो जो ज़कात नहीं देते? मुशरिक ने तो वैसे ही ज़कात नहीं देनी। असल बात ये है कि ज़कात का ख़ास तौर पे ज़िक्र इसलिए आया कि ये कुर्तुबी फरमाते हैं कि कुरैश जो थे वो बड़े मालदार लोग थे, वो गरीबों का और इनके ऊपर बहुत सदका व खैरात करते थे, मगर जो लोग मुसलमान हो जाते थे ना, ये उनको महरूम कर देते थे। तो उनकी मजम्मत करना था कि ख़ास तौर पे ज़कात की बात की गई कि अपना माल खर्च नहीं करते। अगर आम मानों में लें, हमारी वो जो ज़कात हम देते हैं उस मानों में ना लें, माल के खर्च करने के माने में लें, आम सदकात के माने में लें, तो वो जो माल खर्च नहीं करते खैर के कामों में, तो ख़ास तौर पे ज़कात को मेंशन किया गया। और इसके मेंशन करने में एक ये भी है ना कि देखें, जिसको ये देखना है कि अल्लाह से मोहब्बत मुझे है या नहीं, वो ये देखे कि जब अल्लाह की खातिर माल खर्च करने को कहा जाता है तो मेरा हाथ खुलता है कि नहीं खुलता। मैं उस वक्त अपना माल बचा बचा के तो नहीं रखती? कि ये एक क्राइटेरिया है, अल्लदीना ला युतूना ज़कात, तो आम मानों में भी इसको लें, माली सदकात के मानों में भी इसको लें, तो फिर भी आप देखें जिसके लिए आपके दिल में मोहब्बत होती है, लाजमी तौर पे आपके हाथ से उसके लिए पैसा खर्च करना कोई मुश्किल होता ही नहीं है, पैसा निकालना मुश्किल होता ही नहीं। आप देखें, आपको अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना है, कभी मुश्किल हुई? इतना खर्च भी कर लेंगे फिर भी नहीं थकते, कहते हैं इन्हीं के लिए तो है, और किससे बचा बचा के रखते हैं, जिससे कोई खास लगा ना हो, खास मोहब्बत ना हो, उसे कहते हैं बचा के रखो। उस वक्त हमें सेविंग का याद आ जाता है। तो अल्लाह ताला से जिसको मोहब्बत होती है ना, वो फिर उससे पैसे को बचा बचा के नहीं रखता। तो हम भी अपने माल खर्च करने के ट्रेंड्स को देखें, कहां पे हम शौक से खर्च करते हैं, हम देखते नहीं है कितने पैसे जा रहे हैं, किसी बुटीक पे, मॉल में, या मस्जिद में अगर आपसे कुछ चंदा मांगा जाए वहां, या दीन के काम के किसी और काम के लिए, दीन को कोई जरूरत हो, अल्लाह का कोई काम हो उसके लिए। क्योंकि ये लोग जकात नहीं देते थे, ये नहीं माल खर्च करते थे, उनको अल्लाह ताला से क्या, उनको तो अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए वो माल खर्च ही नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वैल ऐसे मुशरिकीन के लिए जो जकात नहीं देते। और दूसरा माना अगर हम जकात का लें, तो जकात का दूसरा माना है नफ्स की जकात। नफ्स की जकात कैसे है? मन जक्काहा, जैसे कद अफलाहा मन जक्काहा, कामयाब वो हुआ जिसने इसको पाक कर लिया, इस नफ्स को पाक कर लिया। तो पाकी के लिए आता है ना, पाकीजगी के लिए। नफ्स की पाकीजगी किस में है? नफ्स की जकात ये है, इंसान ईमान ले आए, इसको शिर्क से पाक कर ले अपने नफ्स को। तो दोनों मानों में आप देखें, नफ्स की भी पाकीजगी, क्या अगर नफ्स की पाकीजगी किस में लें जकात का माना, तो मतलब ये है कि शिर्क से पाक करने, ये शिर्क से नहीं अपने आप को पाक करते थे, ये पाकीजगी नहीं इख्तियार करते थे। और माल की सदकात की वो देखें तो ये हाथ से कुछ निकालते भी नहीं थे, कुछ नहीं देते थे। वहम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के भी इनकारी थे, आखिरत के इनकारी भी हैं, इसीलिए वैल इनके लिए, आखिरत को मानते ही नहीं। और जाहिर है आखिरत का इनकार तो इंसान को बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि जिसको ये ख्याल हो कि आखिरत है ही नहीं, फिर उसका अमल सोचें क्या होगा। और जिसको आखिरत का यकीन हो कि वहां पे जाके बदला मिलना है, उसको तो ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोई भी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है उसको 100% जिसको यकीन है वहां पे मिल जाएगा, उसको तो ऐसे ही लगेगा ना, अल्लाह के रास्ते में देना उसको कैसे लगेगा। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं, कभी डरते हैं आप बैंक में जमा कराने से पैसे? कभी किसी को डर लगा हाय पता नहीं मिले कि नहीं मिले? कभी नहीं खौफ होता हमें, अल्लाह के रास्ते में देते हुए ऐसे लगता है कि हाय चला गया, इतने खर्च हो गए मेरे पैसे। वो खर्च नहीं हो गए, वो सेव हो गए हैं, वो सेविंग है, सेविंग अकाउंट पे हमने जमा करा दिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी, वो सेविंग हो रही है आपकी। बल्कि दुनिया के एक लॉकर में तो रखाओगे, तो कल को मर गए तो क्या होगा, लॉकर की चाबी किसी और को मिल जाएगी, वो तो यहीं रह गया। लेकिन जो इसने अल्लाह के बैंक में जमा कराया ना, उसकी चाबी साथ ही रहेगी आपके हमेशा, वो कहीं नहीं जाता। जिसको आखिरत पे यकीन है, उसके लिए खर्च करना भी मुश्किल नहीं, उसके लिए अमल करना भी मुश्किल नहीं, उसको तो पता है यहाँ पे कुछ अगर थोड़ी भी खाली तो कोई बात नहीं है, वहां पे मिल जाएगा बदला। यहाँ पे सबर भी कर लिया तो क्या हो गया, वहां पे इसका इनाम है। यहाँ पे मुश्किल भी बर्दाश्त कर ली तो कोई नहीं, वहां पे आसानी है। तो उस जिसकी नजर वहां पे होती है, फिर उसके लिए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं। तो वो तो आखिरत पे यकीन ही नहीं रखते थे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हलाकत ही है, तबाही है, बर्बादी है, और जहन्नुम की एक वादी का नाम भी है बैन। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, वो जो ये करके आएंगे ना, उनके लिए ऐसा अजर है जो गैरु ममनून है, कभी खत्म नहीं होने वाला। यानी उनको वो अजर मिलेगा जिसका दुनिया में तो कोई भी चीज, कोई भी चीज आप ले लें, चाहे वो पैसा है, गाड़ी है, हर चीज एक दिन कम होते होते डिटीरियोरेट होते होते खत्म हो जाएगी। और कुछ नहीं तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जानी है, वो भी खत्म होने वाली चीज है। आखिरत चूंकि अनलिमिटेड है, दुनिया की हर चीज ही लिमिटेड है ना, इसलिए यहाँ पे इसकी चीजें सब लिमिटेड है, जिंदगी यहां भी लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड। आखिरत अनलिमिटेड, उसका अजर भी अनलिमिटेड, दुनिया लिमिटेड, उसकी हर चीज भी लिमिटेड। तो वहां पे तो देखिए एक एक नेकी का भी इतना बेहिसाब अजर है। अब आप इससे एक और अंदाजा लगाएं कि एक हदीस आती है इस सिलसिले में कि अल्लाह ताला किस तरह ऐसा अजर देते हैं जो खत्म नहीं होने वाला। कि अगर किसी बीमारी या किसी और उजर की वजह से कोई नेकी का अमल ना कर पाए, यानी रोज वो करता था, रोज उसका आदी था, एवरीडे करता था, मगर बीमारी की वजह से नहीं कर सका, या किसी सफर की वजह से या किसी और उजर की वजह से, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरा बंदा जो अमल अपनी तंदुरुस्ती में करता था और फुर्सत के औकात में पाबंदी से किया करता था, उसके उजर की हालत में वो आमाल बगैर किए हुए, किए नहीं है उसने, लेकिन वो आमाल उसके नामा आमाल में लिखे जाते रहे, लिखे जाते रहो। इस्तकामत की देखा है कितना फायदा है। आप इस्तकामत से कोई काम करते रहते हैं, उसके बाद कभी नहीं भी आपसे हो सका तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला देते हुए थकता नहीं है। अल्लाह की अता देखें कैसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा किसी अच्छे तरीके से इबादत करता रहा हो, फिर वो बीमार हो जाए, तो जो फरिश्ता इस पर मामूर है उससे कहा जाता है कि ये तंदुरुस्ती के ये अय्याम में जो अमल करता था उसका वो अमल लिखते रहो ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। तो अजर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला उसके अमाल की हिफाजत करने वाले फरिश्तों से फरमा देता है कि तुम लिखते जाओ इसके अजर, लेकिन जो आखरत का अजर है वो सही वो अजर है जो बेहिसाब है। अल्लाह ताला हमें भी बेहिसाब अजर अता फरमाए। अल्लाह कोई ऐसी नेकी हमसे ले ले जिसका अजर कयामत तक मिलता रहे। और याद रखें, जितना आपका इखलास ज्यादा होगा ना, उतना ही नेकियों का अजर गैर ममनून होगा। ऐसा ना हो कहीं कि बड़ी बड़ी नेकियां, नाम की बड़ी बड़ी नेकियां हम करते जाएं और खुद ही अपने हाथों से बर्बाद करते जाएं। अब यहां से अल्लाह ताला की जो कुदरत के दलाइल हैं और उसकी कुछ मखलूक का जिक्र है, कैसे अल्लाह ताला ने, जैसे हम पढ़ते भी हैं कुरान में, वलकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, के अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, तो उसकी कुछ तफसील यहाँ पे है। फरमाया, कुल कह दीजिए ए नबी, आप कह दें, अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लदी खलकल अर्द फी यौमैन, क्या तुम उस रब का इनकार करते हो, उस खुदा से कुफर करते हो, उसकी अजमत नहीं पहचानते जिसने इस जमीन को पैदा किया 2 दिनों में। यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस जमीन को जिस पर तुम रहते हो, उसको 2 दिन लगा के पैदा किया। ये जमीन जिस पे पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, लावा भी है, पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, खजाने हैं, कितना कुछ है इस पे, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने इसको बनाया और 2 दिन लगा के बनाया। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार भी मकसूद है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे किसी को शरीक कर सकते हो जिसने तुम्हारे रहने के लिए इतना खूबसूरत इंतजाम किया। और इसमें ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने 2 दिन जो लगाए, तो आपके शायद जहन में आ रहा हो कि अल्लाह ताला तो कुन कह के पैदा कर सकते हैं, 2 दिन क्यों लगाए अल्लाह ताला ने। बात ये है कि जो चीज स्टेप बाय स्टेप की जाए, जो चीज ग्रेजुअली की जाए, अल्लाह ताला चाहे तो कुन कह के भी कर सकते, लेकिन जो चीज ग्रेजुअली की जाए उससे पता चलता है कि उसके पीछे बड़ी प्लानिंग है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े इसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचने के लिए जो जब मरहलों से वो गुजरती है वो चीज, उसके अंदर बड़ी मसलहत होती है। मसलन मिसाल के तौर पे आपको एक बात से वाजे करती हूँ, एक बच्चा पैदा होता है, आज पैदा हुआ कल को वो बड़ा आदमी बन गया, बताएं आप जरा, अल्लाह चाहे तो ऐसे हो सकता है, एक दिन पैदा हो अगले दिन बड़ा लड़का बन जाए, तीसरे दिन जवान हो जाए, 3 दिन के अंदर पूरा आदमी बन जाए, लेकिन उसके अंदर उसके लिए खैर नहीं है। वो जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के पला बढ़ा, उसी के अंदर उस मखलूक की खैर है, अल्लाह की मसलहतें उसमें, उसकी हिकमतें हैं। तो 2 दिन में जो उसने एक स्टेज से दूसरे पे, मसलन जैसे अब तो साइंस हमें बताती है ना कि जमीन कूल डाउन हुई फिर ये हुआ, तो उसके अंदर मसलहतें हैं। ये 2 दिन का भी जो टाइम है, ये नहीं है कि हम ये कहें जो हमारी जमीन के 2 दिन, वल्लाह आलम के कौन से जो अल्लाह ताला के पास दिन है उन वो मुराद है यहाँ पे। और हम तो कुरान में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एक दिन, हमारे जो अल्लाह ताला के पास जो एक दिन है वो हमारे 50,000 साल के बराबर है। इसका मतलब है उसका हर काम कितना वेल प्लान्ड है, और ये भी पता चलता है उसने इंसान के लिए कितना एहतमाम किया कि 2 दिन में इस जमीन को पैदा किया, वतज आलून लहू अंदादन, और तुम्हें ना ये शर्म आई कि तुम उसी के साथ शरीक ठहराते हो। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये है रब तमाम जहानों का, ये है तुम्हारा रब जिसने जमीन को पैदा किया तुम्हारे लिए। और ये एक हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दिनों के बताया कि इस दिन में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पैदा किया, इस दिन में इस चीज़ को पैदा किया, और उसने जुमेरात के दिन आसमान को पैदा किया, जुमा के दिन सितारों को, चांद सूरज फरिश्तों को पैदा किया, 3 सातों में, और इस तरह। तो क्योंकि यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने पूछा था कि आसमान और ज़मीन के पैदा करने के मुतालिक सवाल किया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बता दिया और ये बताया कि आखिरी सात में अल्लाह ताला ने वो इब्लीस को जन्नत से जब उसको निकाला था, वहां से हुक्म दिया था सज्दे का, तो उसको निकाल दिया वहां से, तो यहूद ने पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी हो गया। उन्होंने कहा अगर आप पूरी बात बता देते तो आपकी बात सही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए और फरमाया लकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुगूब, कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसको कोई थकावट नहीं हुई। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने 6ठे दिन रेस्ट किया, फिर 6 दिन के 6 दिन पैदा करके 7वें दिन यानी आराम किया। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अल्लाह ताला को इनको बना के वो कोई थका नहीं है, और जब उसने इनको बनाया तो उसमें उस वक़्त उसका कोई शरीक नहीं था। वह जहाला फीहा रवासिया मिन फौकिहा, और इसी के ऊपर से उसने पहाड़ बनाए, यानी पहा मिन फौकिहा का मतलब क्या, हा किसकी तरफ जा रही है, जमीर जमीन की, ठीक है, इसमें पहाड़ बनाए इसी के ऊपर से, पहाड़ इसमें गाड़ दिए, यानी इसका मतलब है पहाड़ इसके नीचे भी हैं, इसके नीचे भी पहाड़ है जमीन के नीचे और ऊपर भी जा रहे हैं। और आज तो साइंस बता रही है ना, उस वक्त तो नहीं लोगों को पता था, जितना आज इन आयात को हम समझ सकते हैं ना, उस जमाने के लोग शायद ना इतना समझ सकते। तो पता चला कि यह सब कुछ खुद नहीं पैदा हो गया, खुद ये मौजूद नहीं है, ये अल्लाह ताला ने पैदा किया और उस वक्त उसका कोई शरीक नहीं। जब वो पैदा कर रहा था तो कोई साथ क्यों मिला नहीं था कि जिसने साथ मिलके पार्टनरशिप की हो, या किसी ने प्लानिंग में कोई हिस्सा लिया हो, या किसी ने कोई मशवरा दिया हो। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो और उसको पहचानो। वह बारक फीहा, और बरकत डाल दी इसमें, किसमें, इस जमीन में, जमीन में जितनी चीजें उनमें भी बरकत डाल दी। वकद्दर फीहा, और मुकद्दर कर दी, अंदाजे से रख दी इसमें, क्या अकवातहा, उसकी खुराक, उसकी पैदावार, हर इलाके की मखसूस पैदावार उसने मुकर्र कर दी। कितने दिनों में, फी अरबाती अय्याम, 4 दिनों में। ये सारा सिस्टम, ये सारी कैलकुलेशन और सारा रखना 4 दिनों में हुआ। अब ये इससे हमें पता चलता है ना, हम भी सिस्टमेटिकली काम करें, स्टेज बाय स्टेज। हम कितने जल्दबाज हो जाते हैं ना, आज ही हो जाए बस, हर काम आज ही हो जाए। तदरीज जो है ना, ये अल्लाह का कानून है। आप देखिए, एक बच्चा है, उसको पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, हालांकि अल्लाह चाहे तो कौन से पैदा कर सकता है, मगर उसका हर, इसने एक दुनिया का एक निजाम बनाया ना, उसमें हर चीज में तदरीज है, तदरीज का कानून है, ग्रेजुअली होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इंसानों की भलाई इसी में है कि ग्रेजुअली चीजें बढ़ें, ग्रेजुअली काम हो। सवाल लिसाइलीन, इसमें बराबर है सवाल करने वालों के लिए, यानी जरूरतमंदों के लिए पूरा जवाब है इसके अंदर, उनके लिए एहतमाम है। साइलीन की जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये सब रखा, नहीं बराबर है का मतलब है उनकी जरूरत पूरी की, अल्लाह सबके लिए पूरा पूरा है। अच्छा, अब ये इसमें इतनी डेप्थ है इस आयत में, यानी आप इसके अंदर जितना गौर करते जाएं उतना ही आप कहेंगे, हैरान होंगे कि यानी अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि इस ये जमीन जब अल्लाह ताला ने बनाई तो जमीन हिलती थी, स्टेबल नहीं थी, उसके ऊपर आप रह नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को ऐसे इसमें गाड़ दिया जैसे मेखें होती हैं, कील होते हैं ना किसी चीज को स्टेबल करने के लिए, इस तरह अल्लाह ताला ने कीलों को गाड़ दिया, और ये अब जमीन को स्टेबल किया इसके बाद, ताकि इंसान उस पर रह सके, और इसके अंदर बरकतें भी रख दी, फूड की आपकी तमाम जरूरतें, जो हवा, पानी, खाना पीना, सब तरह की जरूरतें रख दी, बरकत रखी। एक बीज आप डालते हैं, उससे कितने फल निकल आते हैं, है ना, एक दरख्त निकलता है उसे हर साल उस मौसम में फल निकल। एक आम की गुठली डालते हैं जमीन में, कितने फल उससे निकालते हैं, बेशुमार। तो बरकत है ना, ये बरकतें इतनी रखी हैं कि यानी थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सी खाद डाली आपने, कितनी बरकतें समेटते हैं। और बरकत का माना क्या होता है, खैरे कसीर, बहुत ज्यादा खैर, खत्म ना होने वाली चीज, यानी इंसान की जरूरत की जो चीजें हैं ना, उनको अल्लाह ने बरकत के साथ इस जमीन में रखा हुआ है। आप नहीं कभी सुनेंगे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बस पानी खत्म हो गया दुनिया से, कितने लाखों सालों से इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अच्छा, आप देख रहे हैं यहां पे इस एक ये थोड़ी सी आयतें हैं, इनके अंदर आप देखें सारी जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, सबकी बात हो रही है, और समझाया किसको जा रहा है, बताया किसको जा रहा है, अहले मक्का को। ये नहीं कहा गया बस ना अहले मक्का को नमाज रोजे का बताओ और ये शिर्क से मुआनत का, ये चीजें उनको क्या जरूरत है पढ़ाने की बताने की, उनको कहाँ समझ आएगी। इससे क्या पता चला है कि दीन की तबलीग जो है ना, उसकी हिकमत कि दुनिया के उलूम को भी साथ लेके चलो। तो बात यही है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था, सबसे पहले चीजों के नाम, अशिया के नाम, राइट, दुनिया का इल्म था ना, ये चीजें क्या हैं, सब चीजों के नाम बता दिए थे, सूरह बकरा में पढ़ा है ना, तो ये इल्म था ना दुनिया का। लेकिन जब उसमें दीन का इल्म नहीं था ना, तो शैतान ने उनको बहका दिया, शैतान के चुंगल में फंस गए, उनके अशिया का ही इल्म था सिर्फ। और फिर जब अल्लाह ने उनको फिर हिदायत भी दे दी, दीन का इल्म भी दे दिया, तो फिर देखें फिर सीधे रहे। तो दीन का इल्म और दुनिया का इल्म, दुनिया में इंसान रहता है तो दुनिया के लूम की तो जरूरत पड़ेगी ना, ये भी साथ साथ चलेंगे ना। बेहतरीन तौर पे तबलीग आप तभी कर सकते हैं जब इन दोनों लूम को साथ लेकर चलते हैं। जिसने दीन का इल्म दिया, उसी ने ये दुनिया भी बनाई है, उसी ने ये दुनिया की चीजें बनाई हैं जिनका इल्म हम ले रहे हैं। असल में हम जब ये इनको अलग अलग खानों में बांट देते ना, हम साइंस भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते, फॉर्मूले रट लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो और ये कर लो बस, ये उसके पीछे जब दीन का इल्म नहीं होता ना, तो फिर इंसान इसी तरह पढ़ता है, इसीलिए साइंस से फिर रब तक नहीं पहुंच पाते। वरना तो आप देखें, दुनिया का इल्म ले लें, कोई भी, कोई भी दुनिया का इल्म ले लें, कोई साइंस ले लें, जियोलॉजी ले लें, आप हिस्ट्री ले लें, आप कोई भी दुनिया का इल्म ले लें, इन द एंड वो आपको रब तक ही पहुंचाता है। अगर आप उस फ्रेम से देखें, अगर आप कुरान की ऐनक लगा के उसको पढ़ें, हम क्या करते हैं, या तो दुनिया का इल्म लो या दीन का लो, यानी उन दो बिल्कुल दोनों ऑपोजिट कर देते हैं। हालांकि मैं ये समझती हूं दोनों में एक दूसरे की जरूरत पूरी होती है। दुनिया का इल्म ले वो भी रब तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि आप दीन के इल्म के साथ उसको हासिल करें। आप ये देखें, ये आप साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, आगे भी आप पढ़ रहे हैं कि आसमान जो था वो धुआं था, तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी नहीं है क्या इसमें? आप कौमों के हालात पढ़ते हैं, हिस्ट्री नहीं है क्या उसमें? लेकिन हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, क्या कभी हमने इस एंगल से समझाया? हम कहते हैं साइंस तो दुनिया का इल्म है। हालांकि देखें तो सही, वो पढ़ के भी आप रब को पहचान सकते हैं अगर शऊर के साथ पढ़ें, अगर कुरान का इल्म हो पीछे। वो के साइंस में भी क्या है, रब की जो निशानियां हैं दुनिया में बिखरी हुई हैं उन्हीं का इल्म है ना। तो अल्लाह ताला ने तो खुद ही फरमाया कुरान में, गौर करो इन निशानियों में। लेकिन जब कुरान का इल्म साथ नहीं होता, दीन का इल्म साथ नहीं होता, तो हम कभी उस तरह से गौर ही नहीं करते। हम सब ने साइंस किसी ना किसी क्लास में तो पढ़ी हुई है ना, मगर कितना इस एंगल से पढ़ा साइंस को। तो दोनों अलूम जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे बात नहीं बनेंगे। इसी नियत से जब आप दुनिया का इल्म भी लेते हैं ना, कि मेरा दीन भी ये कहता है, कुरान भी ये कहता है, गौर करो इसमें, अल्लाह को पहचानो, जब आप इस नियत से इस इल्म को भी लेते हैं, वो भी इबादत बन जाता है। हैंड इन हैंड लेके चलना है। कुरान कहेगा गौर व फिक्र करो कायनात में, तो इंसान एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट भी पढ़ता है, सितारों को, सदियारों को, सूरज चांद को भी स्टडी करता है, रब को पाता है। कुरान कहेगा देखो क्या कुछ रब ने उगाया जमीन में, इंसान बॉटनी भी पढ़ेगा तो उसमें भी रब को ही पाएगा। फिर कुरान से वो देखेगा तो अल्लाह ताला फरमाता तुम्हारे खाने को चौपाए बनाए, पढ़ा नहीं था हमने लास्ट टाइम, चौपाए बनाए, और देखो दूध कैसे निकलता है गोबर और खून के दरमियान से। तो उस वक्त आप क्या पढ़ रहे होते, साइंस नहीं पढ़ रहे होते आप। कुरान में देखें पहाड़ों की बात आई, अल्लाह ताला ने कैसे इनको गाड़ा हुआ। जब आप जियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर देखते नहीं हैं कि जमीन की तहों को जो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पहाड़ों को पढ़ते हैं, कुरान की आयात याद नहीं आती। फिर आसारे कदीमा को देखते हैं तो आपको पहचान नहीं आती कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इन गाफिल कौमों का अंजाम देखो, उससे ध्यान नहीं आएगा रब की तरफ। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो जब इंसान इसके बाद ये पढ़ के जूलॉजी पढ़े, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसको रब ही याद आएगा। फिर कुरान कहता है अपने नफ्सों में गौर करो, तुम्हारे अपने नफ्सों में निशानी है। तब इंसान एक सेल को भी स्टडी करता है ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो रब को पहचानता है। जो मैं कहती हूँ जो डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल की किताबों के हर सफ़े में आप अपने रब की अजमत को पाते हैं, उसकी कुदरतों का एहसास होता है। नुतफे को पढ़ें, मुदगा को पढ़ें, अलका को पढ़ें, आप अल्लाह की आयात में ही गौर फिक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह की निशानियां हैं। वो कैलकुलेशन करेगा, मैथ पढ़ेगा, वो भी इल्म रब ने दिया। जिन्होंने मैथ पढ़ा उनको पता है कि मैथमेटिक्स में कैसे अमेजिंग नंबर थियोरीज हैं, 2+3, 3+2, क्या ये कैसी थियोरीज हैं ये, वो भी रब को पाएगा। तो कुरान जिन चीजों का जिक्र करता है उनको प्रैक्टिकली आप दुनिया के अलूम के जरिए प्रूव होता देखते हैं। हाँ ये है कि जब आप सिर्फ दुनिया का इल्म लेते हैं ना, दीन के इल्म को पीछे कर देते, तो फिर आप वही बनते हैं कोई अरस्तु बन गया। तो जैसे मैंने उनकी बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि हमें इसकी क्या जरूरत है, कोई अफलातून बन गया, कोई आइंस्टाइन बन गया, कि दुनिया के अलूम में तो माहिर हो गए और आपको पहचाना ही नहीं, कोई फिरौन बन गया, वो तो कब्बे हो गए वो पाके। तो इनको अलग नहीं करना, कंफ्यूज हम तब होते हैं जब अलग करते हैं, अलग नहीं करना, ये साथ चलेंगे। आप जितनी ये बातें पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे, ये सारी आयात आप बाहर देख सकते हैं दुनिया के अलूम के अंदर, मगर जब आपने कुरान पढ़ा होगा तभी आपको ये नजर मिलेगी। कोई सब्जेक्ट आप ले लें, हर चीज में आपको रब मिलेगा, उसकी बात मिलेगी। लेकिन जब निगाहें अंधी हो जाएं तो फिर तो कहीं पे भी नहीं रब नजर आएगा, फिर तो जाहिर सी बात है। उसके लिए नजर चाहिए ना, अंधे ना हो। जब आपके पास आंखें होंगी ना, फिर कोई सब्जेक्ट भी, सूखा पत्ता भी ले लेंगे तो उसमें भी रब ही नजर आएगा, उसकी निशानी। तो बात वही है कि आप किस नजर से पढ़ रहे हैं, किस नजर से देखते हैं। अब यहां पे देखें ना, हमें नमाज सिखाई जा रही ना रोजा, कुछ भी नहीं, रब की निशानियां ही हैं सारी। अफसोस ये है कि आज हमारे यहाँ जो सारे ये उलूम है ना, चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का, इतने जॉब ओरिएंटेड हो गए कि जो दीन पढ़ता है वो भी इसीलिए पढ़ता है, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय लोगों के। ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे गरीब जो तबका है वो कहते हैं कि चलो कल को किसी मस्जिद का इमाम बन जाएगा, चार बच्चों को कुरान पढ़ा देगा, चार पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा, कोई डिग्री इसको मिल जाएगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तो हम पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए हम इसी में कर देते हैं। वो भी डिग्री की खातिर, सर्टिफिकेट की खातिर, चार पैसे कमाने की खातिर वो ले लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा फिर ये सामने चीज़ें आती हैं कि बच्चों को मार मार के पढ़ाना, उनको रटाना, उनको ऐसे करना, जो रोज आप खबरों में सुनते भी हैं। तो जैसे उन्होंने खुद पढ़ा वैसे ही आगे बताते हैं, ना खुद रब की पहचान आई, ना दूसरों को करा पाते हैं। और बाकी जो जिनके पास चार पैसे होते हैं वो सोचते हैं हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाएं, हम दुनिया का ही इल्म पाएं, आखिर दुनिया का इल्म ही सब कुछ देता है। उनके नज़दीक यही दो कामयाब लोगों की निशानी यही है कि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, तो वो दो और दो चार बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ना वो रब को पा सकते। तो कोई भी इल्म आप लें, लेकिन जब उसको पीछे कुरान की बैकग्राउंड होगी ना, पीछे कुरान की फोर्स होगी ना, तो वो इल्म आपको अल्लाह से करीब ही करेगा और अल्लाह की पहचान और देगा। अब आज आप कुरान पढ़ के खुद सोचें, आज अगर आप वही साइंस की किताब बच्चों की उठा लें, वही कोई इंग्लिश की, मैथ की, कुछ भी उठा लें, अब आपको नज़र आती है ना रब की निशानी। लेकिन जब आपने पढ़ा था उस वक्त नहीं नज़र आती ना, हमारे उस्तादों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ाते ना, उनको इतना समझ है, सारे अलूम पढ़ डालते हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र कहीं भी नहीं होता। और हमारे रब को देखो कि उसने अपने कलाम में भी सारे जहान का जिक्र कर दिया। तो अगर आप गौर करें तो इसमें सारे अलूम आ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो जो ज़मीन अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है, उस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने उसके लिए खुराक का इंतज़ाम कर दिया। यानी उस वक़्त जब अभी हम कहाँ होंगे उस वक़्त, जब अल्लाह ताला ये बना रहा था हम कहाँ थे, तो पता ही नहीं, कहीं थे ही नहीं। उस वक्त अल्लाह ताला ने कयामत तक जिस जिस ने आना है, जितनी मखलूक, सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, जितनी मखलूक अल्लाह पैदा करने वाला था, हर एक की डिमांड, हर एक की जरूरत, हर एक के टेस्ट के मुताबिक उसकी खुराक का पूरा सामान हिसाब लिखा के, कद्दरा फीहा, कद्दरा लफ्ज देखें ये, यहां पे नोट करें इसको, अंदाजे के मुताबिक, मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ताला ने, यानी हिसाब किताब के साथ जमीन में रख दिया। अब वो सोचते नहीं है, लाखों सालों से इसी जमीन पे इंसान रह रहा ना, तो हमारा फूड कहां से आ रहा है, कहीं स्पेस से तो उतरता नहीं है, इसी से खा रहे हैं ना आप, तो फिर इसी ने तो रखा होगा अंदर, तो इसके अलावा है किसने रखा हुआ। मट्टी को आप खोदें, खोद के देखें अंदर कुछ निकलता है, कहीं पड़े हुए स्टोरेज, कहीं खजाने, कहीं कुछ, कुछ भी नहीं। तो किसने रखा ये, किसने ये सलाहियत दी इसके अंदर, किसने हिसाब लगा के रखा कि, इसका मतलब है जिसने ये इंतजाम किया उसको ये पता है ना कि इसको मैंने कब तक के लिए बनाना है, कितने अरसे तक के लिए। देखिए आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आप कैसे प्लान करते हैं, इतने दिन का राशन, इतने दिन के लिए, इतने, तो अल्लाह ताला को इसका मतलब उसने कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है ना कि तब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उसके मुताबिक उसने हिसाब के साथ इसमें सबकी खुराक रख दी। मसलन आपने सारी जिंदगी जो कुछ खाना है, कितना फल खाना है, कितनी सब्जी खानी है, कितना गोश्त खाना है, कितना पानी पीना है, कितनी हवा अंदर लेने, सब हिसाब किताब करके जमीन में रख दिया गया। अच्छा आप एक एग्जांपल से, कोई कंपैरिजन तो नहीं है, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, जस्ट आपको एक, ताकि आपका जहन एक चीज से समझे इस बात को। हम अपने घरों में ग्रोसरी लेकर आते हैं, एक हफ्ते की आप ग्रोसरी करते हैं, फिर क्या होता है, कभी तो आप ज्यादा ले आते हैं कि वो चीजें सड़ गल के जाती हैं, गार्बेज होती हैं, कभी कोई चीज भूल आते हैं, कभी कोई चीज कम हो जाती है, हफ्ता खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है, फिर आप दोबारा लेने चले जाते हैं। जितनी मर्जी हम लिस्टें बना लें, प्लानिंग है, कर लें, कुछ ना कुछ कमी बेशी हर हफ्ते ही रह जाती है। ये हमारी सिर्फ एक हफ्ते की ग्रोसरी का हाल है ना। इवन ये चलो एक हफ्ते को छोड़ो, एक दिन का ही आप खाना पकाती है ना। अब आपने खाना बनाया, किसी दिन तो ये हाल होता है कि बच जाता है, फ्रिज में पड़ा पड़ा भी 4 दिन बाद फेंकती, और कभी हाल ये होता है कि वो उसी वक्त ही खत्म हो जाता है, फिर और भी कोई पूछ रहा होता है कि कुछ है और, हालांकि घर के अफराद वही हैं, रोज हम खाना पकाते हैं, फिर भी हमारे ये अंदाजे। रब के अंदाजे देखो, इतने लाखों साल से ये जमीन, इस पे मखलूक रह रही है, कितनी मखलूक है, सिर्फ इंसान नहीं है ना, आप तमाम स्पीशीज को देखें, कितने स्पीशीज है, कितनी तरह के हैं हैवान, और अभी तक इंसान मालूम भी नहीं कर सका, पता है कि कितने लिविंग थिंग्स की सारी स्पीशीज को जान ही नहीं सका इंसान। जितनी स्पीशीज है सब की डिमांड, सब मांगने वालों के लिए, फरमाया ना सवाल लिसाइलीन, सब मांगने वालों के लिए उनकी तलब के मुताबिक अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ, पूरा सामान रखा हुआ, पूरी ग्रोसरी यहां पे मौजूद है, जितना सारी मखलूक ने खाना है कयामत तक, जब तक इसको रैप अप नहीं कर देना, सब इसमें रख दिया। आपको उतरता देखते हैं कि रोज कहीं से आ रहा हो यहां पे रखा जा रहा हो, नहीं ना, अल्लाह ने पहले दिन से रख दिया। तो रब का इल्म देखें, हर एक की नीड के मुताबिक जितनी मखलूक उसने पैदा करनी, हाँ सारी मखलूक उसी की है ना, वही सबको खिला रहा है, जो पैदा हो चुकी उन, वो जो खा चुके वो भी, जो आने वाली है उनके लिए भी, जो आज चल रहे हैं उनके लिए भी, कोई खुश्की में है, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई एक चीज खाता है, कोई दूसरी चीज खाता है, कर सबका गिन के शुमार करके उसने रखा है। और फिर ये भी नहीं कि सबने एक ही चीज खाने, चलो वो फिर भी आसान था, सबने ही फल खाने होता तो फिर वो तो चलो एक फल, लेकिन यहां पे तो किसी ने गोश्त खाना, किसी ने फल खाने, किसी ने सब्जी खानी, किसी ने कुछ और चीज खानी है, जो शेर ने खाना है वो बकरी ने नहीं खाना, सांप ने एक चीज खानी, चिड़िया ने दूसरी खानी, इंसान ने कुछ खाना है, जिन्नों ने कुछ और खाना है, सबकी जरूरियात मुख्तलिफ है ना, सबकी जरूरियात के मुताबिक उनका इंतजाम। हम तो देखें, फिर अगेन मैं कह रही हूँ, वो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए, अब हमारे घर में 2-4 अफराद ही होते हैं, सब अगर अलग अलग चीज डिमांड करने लगे, किसी ने कुछ खाना, किसी ने कुछ करना है, हम कद सबको डांट के चुप करा देते, मेरे से नहीं बनता इतना, हर एक ही अलग डिमांडे हैं। अल्लाह के दस्तरखान पे हर एक के खाने के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, उसके जिस्म के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जमीन में चीजें रख दी, और पूरे हिसाब के साथ, इसीलिए तो निकलता आता है ना, और ना तो इतना निकल आता है कि आज ही खत्म हो जाए, देखिए कद्दर आया ना मुकर्रर अंदाजे से, ऐसे अल्लाह ताला ने रखा है, ये नहीं होता कि आज ही सारा निकल आए, आज ही सारा निकल आता तो क्या होता, खुद सोचे, हम सारा आज कुछ जाया कर देते, ज्यादा तो जाया कर देते, कुछ खा लेते, कुछ खराब हो जाता, चलो जी अगली नस्लों के लिए कुछ भी ना बचता। अल्लाह ताला ने हर आने वालों के लिए उनका इंतजाम किया, जो अगली नस्लों ने आके खाना है वो आज नहीं निकलेगा, उस वक्त निकलेगा जब उन्होंने आना, आज वालों के लिए आज है, सुभान अल्लाह। और कद्दरा का दूसरा माना छुपा हुआ भी होता है, तकदीर भी हमारी छुपी हुई है ना हमसे, तो इसमें भी देख लें तो बड़ी गहराई है, छुपा के अंदर रख दी है चीजें, ऊपर नहीं नजर आती ना, उनकी न्यूट्रिशन नजर आती है ना, उनका उगना नजर आता है ना, किधर है, खोद के देखें किधर है चीजें, हमें तो नहीं नजर आ रही, कहीं आम पड़े हो, कहीं अमरूद पड़े हो, कहीं कुछ और चीजें पड़ी हो, कहीं गंदम पड़ी हो, चावल पड़े हो, कहीं भी नहीं, छुपा के रखी, दूसरों की जो आने वालों की है वो आज छुपी हुई है, वो आज नहीं हमें नजर आ रही, जब वो आएंगे तो फिर मिलेंगे। इसीलिए कभी मुझे समझ नहीं आती ये बात, जब हम कहते हैं ना कि अगर आबादी बढ़ गई तो लोग खाएंगे कैसे, मुल्क के वसायल उतने नहीं है। हमने भी अक्सर सुना होगा ना, ये हंसी आती है इस बात पे, अल्लाह कुरान की नेमत नहीं है ना इनके पास, तो इसलिए ऐसी बातें करते हैं। क्या पहले तुम खिलाते थे? जिस रब ने आज तुम्हारे खिलाने के लिए जमीन से वसायल पैदा करने, कल वालों को ना उनके लिए ना देगा? जिसने पैदा किया उसने उनका इंतजाम भी किया। आज वालों को तुम खिलाते हो क्या, जो कल वालों का बोझ तुम्हें महसूस होने लगा? और फिर हम तो इंसानों की बातें कर रहे हैं, बाकी जो इतने जानदार यहाँ पे मौजूद है उन सब का इंतजाम किसने किया हुआ? एक दफा एक हिकायत आती है बड़ी दिलचस्प, यह कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह मैं आज तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। वो पता है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े बादशाह थे, तो पहले दिन उन्होंने कहा कि अब मैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह, मैं सबको खिलाना चाहता हूँ। अच्छा फिर पहले दिन अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा चलो पानी की मखलूक की तुम आज दावत करो। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा मैं पानी की सारी मछलियों की दावत करता हूँ। तो उन्होंने जिन्नों को इंसानों को लगा दिया, वो खाना पका रहे हैं पका रहे हैं पका रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक दस्तरखान हो गया, 6 महीने तक पका पका के थक गए। अच्छा पका पका के थक गए, तब जब उन्होंने सारा तैयार हो गया तो उन्होंने दावत दी। सबसे पहले एक बड़ी सी मछली आई, वो मछली जो आई उसने आके एक ही लुकमे में सारा खा लिया, एक लुकमे में। और फिर कहती और चाहिए। उन्होंने कहा तो मेरे तो ये नौकर 6 महीने से पका पका थक गए, तुमने एक ही लुकमे में खा लिया सारा। वो कहने लगी मेरा रब तो ऐसे 3 तैयार लुकमे रोज मुझे खिलाता है, जिसको पकाने के लिए तेरे नौकर जिन और इंसान 6 महीने लगे रहे, मेरा रब ऐसे तो 3 लुकमे मेरे मुंह में रोज डालता है, आज तेरी मेहमानी की वजह से मैं भूखी रह गई। ये सिर्फ एक इबरत के लिए बात है कि देखो वो खिलाता है पिलाता है, वो जो अपनी मखलूक को खिला पिला सकता ना, इंसान नहीं खिला सकता। सुभान अल्लाह, इसीलिए तो उसने कहा है ना रिस्क मेरे जिम्मे है, रिस्क मैंने देना है, मेरा जिम्मा है। तुम्हारा जिम्मा क्या है? तुम अपने रब की मान के चलो, तुम अपना काम अगर छोड़ दोगे तब भी मैं तो अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे फिर भी खिलाता जाऊंगा। हम सजदा नहीं भी करते उस रब को तब भी वो रिस्क देता जाता, सबके रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है तो फिर उसके बाद उसके 4 दिन में उसको इस तरह से सजाया है कि उसमें इतना कुछ इंतजाम किया है, कितना कुछ भरा हुआ है जमीन में, कितना कुछ छुपा हुआ है जमीन में। जबकि इस मट्टी में ना कोई जायका है, ना कोई रंग है, ना मीठी है ना खट्टी है, ना कोई खुशबू है इसमें, फिर कैसे पौधे निकल आ रहे हैं और कैसी उनकी जो ये जो उनकी, सिर्फ यही नहीं कि कितनी मखलूक है और कितना कितना किसके लिए चाहिए और उस कैलकुलेशन के साथ इसमें रखा है, बल्कि कैसी कैसी चीजें इसमें उगानी है। कहीं फल निकल रहे हैं, कहीं नट्स निकल रहे हैं, कहीं फसलें निकल रही हैं, कहीं कुछ है, फिर उनकी क्या शेप्स होंगी, उनके क्या जायके होंगे, उनकी कैसी पैकिंग होगी, उनकी कैसी डिजाइनिंग होगी, सब चीजें। वरना हर एक चीज को एक ही शक्ल दे दी जाती, सर चीजों को एक ही शक्ल हो जाती, मसलन ऑरेंज की शक्ल हो जाती सब चीजों की, गोल होती सारी चीजें, नहीं कोई लंबी है कोई छोटी है कोई मोटी है कोई गोल है कोई बड़ी। देखिए आप कितनी तरह की वैरायटी है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें और फिर मुख्तलिफ जगह के रहने वालों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक। इसीलिए तो इसमें सारी बात आ जाती ना, सवान लिसाइलीन। अब एक लोग गर्म जगह पे रहते हैं उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, उनको जो खाना पीना चाहिए वो मुख्तलिफ है। वे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं सर्द इलाकों में रहते हैं उनकी जरूरियात मुख्तलिफ है, उनको खुराक डिफरेंट चाहिए, तो वो चीज वहीं उगती है उनकी जरूरत के मुताबिक है। जो गर्म इलाकों वाले हैं उनकी जरूरत के मुताबिक वहां पे उगती है, क्योंकि उनकी नीड्स मुख्तलिफ है। तो सब सवालियों के सवालों का जवाब उसने रख दिया, सबकी मांगे पूरी की हैं, जितने जानदार हैं सबकी। अल्लाह हू अकबर, ऐसा रब और ऐसी शाने जिस रब की हो, उसको भी छोड़ के लोग फिर कहीं भटक रहे हों तो फिर उनकी अकलों के ऊपर ही मातम कर सकते हैं। सोचते नहीं है मट्टी में ये अकल किसने रख दी है कि वो ऐसे से डिजाइनिंग वाली चीजें तैयार कर रही है, ऐसे से कलर्स वाली चीजें तैयार कर रही है। किसी फलों के बाग में जाओ तो आपको पता चले कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने तैयार की। बादाम को देखो, पिस्ते को देखो, अखरोट को देखो, सारे ही नट्स हैं मगर मुख्तलिफ। हर जमीन, सारी जमीन है, हमें तो सारी एक जैसी लगती है, लेकिन कोई जमीन के अंदर आप खजूर उगाओ तो उगती ही नहीं है। कहते नहीं, यहां पे नहीं उग सकती, यहां पे ये चीज उगती है, हमें तो सारी मिट्टी एक जैसी लगती है। अल्लाह ताला ने हर एक में डिफरेंट वो रख दी, उस इलाके के मुताबिक, उसकी मौसमी जरूरियात के मुताबिक। बेशक आज तो हम उठा के एक फल दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहां पे जाके खा लेते हैं, मगर जिस जगह पे वो उगता है वाकई वो उन्हीं की जरूरियात के मुताबिक है, उनकी जिस्मानी नीड्स हैं वो। तो मुख्तलिफ मौसमों में भी कौन से मौसम में कौन सा चीज उगानी है, ये भी तो अल्लाह की प्लानिंग ही है कि किस मौसम में किस चीज को उगाना है। गर्मी में आम उगाना है तो, और तरबूज उगाना है तो सर्दी में किन्नू उगाना है। हो सकता है लोगों को वाइटामिन सी, आज वो कहते हैं वाइटामिन सी इसमें ज्यादा है, सर्दी में ज्यादा चाहिए। तो ये किसने मुकर्रर किया है, कितना उगना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस मौसम में क्या होना चाहिए, किस जमीन में कैसा उगना चाहिए, किस टेस्ट का उगना चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रिशन रखनी है, वो भी अल्लाह का ही फैसला है। क्या न्यूट्रिशन रखनी है उसमें, क्या उसकी खुशबू होनी चाहिए, क्या उसका जायका होना चाहिए, किस चीज, किस किस जानदार के लिए क्या चीज बनानी है। अब ये मछलियां मछलियों को खाती हैं तो, लेकिन वो मछलियां तो खत्म नहीं होती जिनको वो खा रहे हैं। अगर अल्लाह उनको वो खत्म हो जाती तो वो बड़ी मछलियां भी मर जाती। लेकिन आप देखें चल रहा है ना निजाम, तो अल्लाह पैदा कर रहा है कहीं से, अगर वो उनको खा जाती हैं तो वो खत्म क्यों नहीं होती। और कभी ये हवा क्यों नहीं खत्म होती, ये भी तो अकवात हा में जहां पे पैदावार है, खुराक है, इंसान के लिए ये हवा कितनी जरूरी है। अब इंसान कहता तो है नहीं यहाँ खुराक खत्म हो जाएगी दुनिया में, अगर ज्यादा इंसान पैदा हो गए, अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो गए लोगों की खुराक खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो खुराक का तो तुम अपना बेड़ा उठाया हुआ है। अब ये भी कभी किसी ने कहा है, हवा खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, पता ना उनके ऊपर तो हमारा है ही नहीं। बस समझते हैं कि हम खुराक तो हम ही पैदा करते हैं बस। आप देख लें कई जगह पे इतना लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर दोबारा वही रिजर्वायर्स निकल आते हैं पानी के, इसी तरह तेल के, इसी तरह और मिनरल्स के। लोग नहीं, नहीं पता चलता है इस वहां से ये चीज डिस्कवर हो गई, ये माइंस का पता चला, तो क्या कहाँ से वो निकली। अल्लाह ने उन कई खजानों को दफन किया हुआ जमीन के अंदर, अगर वो आज से 200 साल पहले निकल आते तो सब खत्म हो जाते। अल्लाह ताला ने आज के लिए उनको रखा, वो आज ही डिस्कवर हुए। हमारे यहाँ तो देखें 4 मेहमान से ज्यादा 10 मेहमान आ जाए तो हमें परेशानी हो जाती है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ये खाना पूरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और अल्लाह को पता है कि मेरे दस्तरखान पे कितने मेहमानों ने आना है और कितनों ने खाना है, उसने उतना पैदा करके रखा हुआ। सुभान अल्लाह। तो ये रब की हिकमत है, उसका इल्म है, ये उसकी प्लानिंग है जो उसने 4 दिनों में की। यहां से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितना एहतमाम किया है ना। आप बताएं ना, देखें एहतमाम आप किसके लिए करते हैं, किसके लिए एहतमाम करते हैं, जिसे मोहब्बत होती है उसी के लिए करते हैं ना। कितना कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए किया ना, वो उगाता ना, इतनी सारी चीजें, इतनी वैरायटियां रखने की क्या जरूरत थी। एक चीज बस कह देता कोई, एक मसलन चावल है, बस यही खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है सारी जिंदगी, वो यही उगना है, यही खाना है। मुख्तलिफ 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 टेस्ट, मुख्तलिफ स्पाइसेस, स्पाइस तो इस्तेमाल ही इंसान करता है, कोई और मखलूक तो करती ही नहीं है स्पाइसेस को इस्तेमाल। तुम्हारे जायकों के लिए उसने क्या क्या कुछ पैदा किया, और फिर उसे जुबान की लज्जत ही नहीं है, उसमें कितनी तुम्हारे लिए तवानाई है, एनर्जी है। सुभान अल्लाह। तो इसमें तो आप जितना गौर करते जाए ना, और भी इसमें गौर व फिक्र करें और अल्लाह को पहचाने, ये शाहकार हैं उसकी कुदरतों के।